चलो चलो
अरे शुरू करो। हाँ क्या कर रहे हो भाई? ठीक से खेलो।
सलाम वालेकुम।
ठीक से देखिए, इसको देखिए।
अरे वो तो
जी बोलिए।
अरे बाबा बॉल रखो ना।
चलने दो चलने दो।
हाँ इधर से इधर भाई भाई इधर से देखो सही।
सलाम जी, होल्ड करें। अब्बास सुनो, अब्बास सुनो।
रखो ना भाई। क्या?
एक मिनट।
टेलीफोन है दफ्तर से, कर्नल सुल्तानी।
हेलो, सलाम वालेकुम कर्नल साहब। क्या हुआ? ठीक है, जरूर जरूर जरूर, अभी आ रहा हूं।
क्या हुआ?
कर्नल साहब थे, अभी इसी वक्त बुलाया है।
अभी?
यहां भी हमला किया?
हाँ, लेकिन अभी रस्मी तौर पर कुछ ऐलान नहीं हुआ है। हमें सबसे पहले यह पता करना चाहिए कि उनकी हरकत कितनी गहरी है और उनकी तैयारी का असली मकसद क्या है।
एक परवाज की टीम बना लेनी चाहिए।
तुम खुद एक बैकअप और एक टीम इंतखाब कर लो।
हमारा ऑपरेशन ऑफेंसिव है।
फिलहाल नहीं।
ख्वाजा सेफर अमीरी बख्तियार जादे।
ख्वाजा सेफर को फिलहाल परवाज करने की इजाजत नहीं है, हेड ऑफिस से हुक्म आया है।
माफ कीजिए, जसारत ना हो तो क्यों?
इस मौजू पर फिर कभी बात करेंगे। सिर्फ इतना ख्याल रखना, ये एक सीक्रेट ऑपरेशन है।
जी जरूर।
इलाके की तरफ चक्कर लगाएंगे।
कॉपी।
सिमर्तो, एल्टीट्यूड का ख्याल रखते हुए एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे।
कॉपी विल बी डन। तो तसव्वुर से बाहर है, पूरा इलाका ले लिया है। ऐसा रहा तो दो दिन में तेहरान पहुंच जाएंगे।
अली, वो शायद हमें सुन सकते हैं। अब यहां से आगे रेडियो का इस्तेमाल नहीं करना।
ओके।
मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे पास आओ। ना 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 ना। बस 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 करो। हेलो।
हाँ जी बोलिए।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
माफ कीजिए लेफ्टिनेंट बाबाई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं।
हाँ?
मैं उनकी बीवी हूँ।
जी जी एक मिनट होल्ड करें।
शुक्रिया।
बाबा सलाम अलैकुम।
अब्बास तुम्हें पता भी है कहाँ हो?
अभी इस वक्त मलिहा हिकमत की खिदमत में हूँ।
मेरा मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है अब्बास।
मैं माफी मांगता हूँ। तुम कैसी हो? बच्चे ठीक है?
हाँ ठीक है। इतने वक्त में हजारों ख्याल आता है, तुम एक फोन तक नहीं कर सकते थे?
अगर मुमकिन होता तो जरूर करता। यकीन करो मौका नहीं मिला। अभी जाता तो आज रात को घर आता।
तुम अपना ख्याल रखना।
तुम भी ख्याल रखना। बच्चों का भी ख्याल रखना। खुदा हाफिज।
देखा 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 देखो
मेरे बच्चे, मेरी जान। भाई के साथ खेलो, मैं अभी आती हूँ।
मैंने आपसे माफी तो मांग ली मलिहा साहिबा।
मुझे ये बताओ मैं किसके लिए आवारों की तरह इस शहर से उस शहर घूमती रहूं? मेरे शौहर मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं करते कि मुझे कुछ बता सकें। अगर मियां बीवी को एक दूसरे पर भरोसा न हो तो क्या फायदा?
किसने ऐसी बात की बेगम? इन दोनों बच्चों की जान की कसम अपनी जिंदगी में तुमसे ज्यादा मुझे किसी पर भरोसा नहीं है।
सही है, इसीलिए बताए बगैर चले गए और अब पूछने पर भी घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हो।
तुम अभी खाना पका रही हो, मुझे खाना नहीं है। साथ बैठकर चाय पीते हैं, कुछ बातें करते हैं।
बहुत याद आ रही थी बाबा, 3 दिन से घर नहीं आया था।
मलिहा साहिबा यहाँ तो देखो, जरा मुस्कुरा के आओ, साथ बैठकर चाय पीते हैं। ये लो। थक गई हो मुझे पता है, परेशान थी, शर्मिंदा हूँ। मैं एक फौजी हूँ और एक फौजी की जिंदगी थोड़ी अजीब सी होती है। अब तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं।
क्या तुम अभी अभी फौजी बने हो अब्बास? कल तक तो तुम अपने दोस्तों के साथ बात करते, हंसते खेलते थे, अब क्या हो गया?
कल तक हमारे हालात अलग थे, लेकिन आज एक ऐसी हालत में है जिसका हमने कभी तजुर्बा नहीं किया था।
कैसे हालात? खुदा की कसम मुझे बताओ क्या हुआ है बस?
मुझ पर भरोसा करो और मुझसे कुछ ना पूछो। अभी कुछ पता नहीं है, जब वक्त आएगा मैं खुद तुम्हें बताऊंगा।
नहीं कर सकती हूँ।
सिर्फ दुआ करो, अगले कुछ दिनों में सब पता चल जाएगा। आओ मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ मेरे पास।
उस दिन मुझे ये पता चला फौजी के साथ जिंदगी गुजारने में कितनी सख्तियों का सामना करना पड़ता है। दो दिन के बाद रस्मी तौर पर ऐलान हो गया कि जंग शुरू हो गई थी।
आप लोग बैठ जाइए। आज मुझे हेडक्वार्टर से हुक्म मिला है जिसके मुताबिक ये तय पाया है कि एक बहुत ही अजीम और जरूरी ऑपरेशन में 140 फाइटर जेट इराक की तरफ जाएंगे। हदफ सिर्फ और सिर्फ इराक की फौजी छावनियां और फौजी इदारे। इस हुक्म के मुताबिक हमारे एयरबेस की जिम्मेदारी ईरान इराक की मुश्तरक सरहदों की हवाई हिफाजत है, जिसमें खुसूसी तौर पर 3 अदद टैंकर जिनकी जिम्मेदारी फ्यूल पहुंचाने की रहेगी। लीडर्स अपने मातहत पायलट्स को इस हुक्म के बारे में जो मैं अभी पढ़ रहा हूं ब्रीफ करेंगे। तुम्हें यह याद रहे, लोगों की उम्मीद भरी नजरें, खुदा के बाद हम फौजियों पर हैं।
अब्बास के मुझ पर बहुत एहसान है। अगर अब्बास नहीं होता, मेरी ना आनी से शादी हुई होती, ना आज पायलट होता।
सईद, तुम तुम्हारे पेशे से राजी हो?
हाँ, क्यों तुम नहीं हो?
क्यों नहीं,
क्या हुआ? आज कुछ खोए खोए से हो?
शादी का दिन जितना नजदीक आ रहा है, ये दिल उतना ही बेचैन हुआ जा रहा है।
पछता रहे हो?
डर रहा हूं अगर उसे खुश ना रख सकूं इस खुदगर्जी के बिना पर।
तो उसमें क्या है, खुदगर्ज नहीं बनो।
अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, ये हालात जो पेश आ रहे हैं, ये जंग जिसमें हम, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस लड़की का क्या होगा?
अगर उसे सारे हालात बता दिए जाएं तो परेशानी की कोई बात नहीं।
उससे क्या फर्क पड़ता है सईद? मेरे भाई, ऐसे हालात का तसव्वुर करने और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है।
क्योंकि इश्क के हम सफर हुए हो, मर्दे सफर बनो।
सलाम अलैकुम सर्जेंट साहब, एयरबेस से फोन आया था, पैगाम छोड़ा है कि प्रैक्टिस के बाद वहां तशरीफ ले जाए।
ठीक है,
गुड लक दोस्तों।
शुक्रिया
शुक्रिया। सईद, ब्रीफिंग में क्यों नहीं आए?
सस्पेंशन ऑर्डर आया है।
सस्पेंशन किस लिए?
नहीं पता, कर्नल साहब के पास जा रहा था। तुम भी साथ चलो।
खुद जाकर उनसे बात करता हूं।
अब्बास, कहीं गुस्सा ना जाए।
रुको, बात करके आता हूं, सब्र करो।
शहीद नुजे बेस की बगावत के बाद और हमारे अमेरिका के साथ रबाबित के कटने के बाद ये बात हिफाजती और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ऐलान की है। ओहदेदार इस मसले को लेकर बहुत ही ज्यादा हसास हैं। वो भी एक पायलट है, उसे मालूमात बड़ी आसानी से हासिल हो सकती है।
लेकिन कर्नल साहब, मैं सईद खुजसेफर को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ सर। हम बचपन में एक साथ बड़े हुए हैं, उसकी तरफ से कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं उसकी जमानत लेता हूँ।
मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। फिलहाल अपना ध्यान सिर्फ 140 फाइटर जेट के ऑपरेशन पर रखो और किसी दूसरी चीज की फिक्र नहीं करो। अब्बास, मुल्क की हिफाजत का मसला तुम दोनों की दोस्ती से ज्यादा अहम है।
क्या हुआ?
ये ऑर्डर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक सभी पायलट जिनकी बीवियां दूसरे मुल्क की हैं उन्हें परवाज की इजाजत नहीं। तुम्हारा केस सबसे हसास है क्योंकि आनी अमरीकी है।
शादी किया हूं भाई, मुसलमान भी तो हो गई है। कमांडर इन चीफ के पास जाता हूं, ये क्या मजाक है?
अभी वहां जाना मुनासिब नहीं है, सब्र करो।
सब्र करूं? सब्र करने से क्या होगा? तुम लोग सब जा रहे हो, मैं बैठकर देखता रहूं? मैंने ऐसे दिनों के लिए यही तो वर्दी पहनी है। मैंने ऐसे दिनों के लिए यही तो वर्दी पहनी है। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। मैंने ऐसे दिनों के लिए यही तो वर्दी पहनी है।
सही, मैं समझ सकता हूं। जो भी खुदा चाहेगा वैसे ही।
बैठो उस ताजा हवा में और दिल पजीर बहार की उस ताजा और दिल पजीर हवा में मैं
में तैयार है। कम है माय डार्लिंग।
आई एम नॉट हंग्री। स्टॉप जोकिंग प्लीज। ओके आई एम सो बिजी नाउ। हाँ
What can I do for you, darling? Do you want to listen to some music? Yeah. Elton John? Frank Sinatra? Music, traditional, Iranian, classical.
ऐ खुदा, ये औरतें अगर समझ जाएं कब बोलना चाहिए कब चुप रहना चाहिए। जस्ट बी क्वाइट प्लीज। ओके
ओके
क्वाइट।
देयर इज ओनली वन वे आउट, divorce, so that you can return and you can fly and I go back to my country.
Ek minute, kya kaha? What did you say? Talaq? Shut up and leave me alone. Kuch samajh mein aaya? Do you understand?
रो नहीं, लो चाय पियो, थोड़ी गर्मी मिलेगी। आप क्या कहते हैं?
कुछ नहीं कहते, लेकिन इनके कुछ नहीं कहने में बहुत से मतलब है। बहाने बनाते, एक छोटे बच्चे बन गए। उनका मानना है मेरी नेशनलिटी सब मुश्किल की वजह है। शायद अगर मैं अमेरिका लौट जाऊं तो उनके लिए बेहतर होगा।
रो नहीं आनी मेरी बहन, तुम्हारा कोई कसूर नहीं और तुम्हारे लिए सईद की मोहब्बत बिल्कुल कम नहीं हुई है। शायद उसका मूड ठीक नहीं होगा, वो भी ठीक हो जाएगा।
जब तक परवास नहीं करेगा ठीक नहीं होगा।
अब्बास से कहूँ उससे बात करें?
मैं सईद को अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती।
सलाम मेरी बेटी।
सलाम
पापा की बेटी। सलमा का हाल कैसा है मेरी जान?
ठीक हूँ पापा जान।
मेहमान है
यहाँ देखो।
कौन आया है?
एनी खाला अंदर रो रही है।
या अल्लाह। सलाम अलैकुम।
सलाम, कैसे हो? ठीक तो हो?
सलाम अलैकुम मनी भाभी, खुश आमदीद। तुम कैसी हो मलिहा? सईद कहाँ है?
सईद घर पर है।
बड़ी खुशी हुई।
आ रानी तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। अब्बास, अब सईद के मामले में क्या होने वाला है?
मुश्किल है, अभी कुछ पता नहीं।
इसका हाल बहुत ही बुरा है, वो खुद को इसका कसूरवार समझती है।
सईद से ऐसी बचकानी हरकत की उम्मीद नहीं थी, इस बेचारी का क्या कसूर है?
अब क्या करना चाहिए?
कुछ नहीं, मैं उसे समझाता हूँ। खाना खाया?
अभी नहीं।
खा लो, फिर उसके पास जाएंगे। ए खुदा,
कर्नल ने कहा क्योंकि तुम हो, क्योंकि तुम्हारा दोस्त हूं, मुझे डिमोट करेंगे और किसी क्लेरिकल डिपार्टमेंट में मेरा ट्रांसफर कर देंगे।
तो तुमने क्या कहा?
कुछ नहीं, मैंने कहा अपनी वालिद की बेकरी में जाकर काम करूंगा, वो इस जिल्लत से तो बेहतर है।
मैं समझ सकता हूं सईद, लेकिन ये कोई दलील नहीं कि तुम इस बातों का गुस्सा आने पर उतारो। मेरे भाई उसके घर वालों ने तुम्हारे हाथ में अमानत दी है, उन्होंने तुम पर भरोसा किया और अपनी बेटी को तुम्हारे साथ एक अजनबी मुल्क में आने दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो? उसका क्या कसूर है?
मैंने इसलिए इतना वक्त गुजार कर पढ़ाई नहीं की है ताकि टेबल के पीछे बैठूं। ये इंसाफ नहीं है अब्बास, मुझे वहां ऊपर रहना चाहिए। मैं अपने ऊपर छत बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मुझे घुटन होती है। मैं आनी से मोहब्बत करता हूं, उससे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन परवाज मेरे लिए इतनी अहम है कि उसके लिए उसे तलाक देने के लिए तैयार हूं।
नाइंसाफी है सही, तुम्हें पता है नाइंसाफी है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
क्या तुमने खुद ही मलिया से नहीं कहा था, खुदा के बाद तुम्हारा पहला इश्क परवाज है और उसके बाद वो? कहा था या नहीं कहा था?
तुम सही हो, कहा था, कहा था।
मैं क्या करूं अब्बास, तुम जैसा कहो वैसा ही करूंगा।
तुम्हारी जगह होता तो बैठकर सोचता कि फिलहाल मुझे परवाज की इजाजत नहीं, लेकिन उसकी बुनियाद पर अपनी जिंदगी के लिए सही फैसला लेता। लेकिन सब्र से, सोच समझकर और अकेलाना।
यानी और कोई रास्ता नहीं है?
शायद हो सकता है, शायद नहीं भी, सिर्फ खुदा जानता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, वादा करता हूं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ये काम करने के लिए मुझे रजायत नामे की जरूरत पड़ेगी।
रजायत नामा?
रजायत नामा आनी का सईद, आगे तुम्हारी मर्जी। चले,
मेरी नजर में हर किसी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, यानी अगर मैं जो भी काम करूं अपने वालिद के नाम के सहारे करूं तो ये सही नहीं है।
सही। सलमा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें कभी अपने वालिद की कमी महसूस होती है?
बहुत ज्यादा। जैसे इंसान बड़ा होता है उसकी मुश्किलात भी बढ़ती चली जाती है।
सही है।
दिल चाहता है कि वालिद के साथ होना चाहिए। सही है कि माँ ने अभी तक कभी किसी बात की कमी महसूस होने नहीं दी है हमें, हमेशा हमें सहारा दिया है, लेकिन फिर भी वालिद वालिद होते हैं।
अब एक और सवाल, शहीद बाबाई की बेटी होने के उनवान से तुम्हारी नजर में उनकी सबसे अहम खसूसियत क्या थी?
वो अपने नर्व्स पर बखूबी कंट्रोल कर लेते थे। बाबा एक ऐसे माशरे में और ऐसे लोगों की दरमियान जिंदगी गुजार रहे थे जिसमें सभी अपनी जिंदगी में मस्त थे और ज्यादा से ज्यादा दुनियावी चीजें बटोरने में लगे थे। बाबा के पास सारे वसाइल होने के बावजूद उनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि वो अपने ख्वाहिशात पर गलबा पा सकें।
तुम अपने वालिद के साथ कितना वक्त गुजारती थी?
बाबा को बहुत ज्यादा नहीं देखा है। कई मर्तबा जब जब वो ऑफिस से घर आते थे तो देर रात हो गई होती थी, मैं सो गई होती थी, वो आकर मेरे सर पर हाथ फेरते, मुझे बोसा देते। सुबह की नमाज के लिए जगाते, साथ नमाज पढ़ते। उसके बाद साथ बैठकर कलाम पाक पढ़ते, क्योंकि पापा हमेशा सूरह यासीन पढ़ा करते थे, उन्हें बहुत पसंद था।
सलमा अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो ये इंटरव्यू फिर किसी वक्त पूरा कर लेंगे। सलमा,
कोई बात नहीं।
ये देखिए जनरल साहब, यहाँ से लेकर यहाँ तक और इस जगह से लेकर इस जगह तक दुश्मन के सभी रडार्स और डिफेंस सिस्टम की मालूमात हासिल कर ली है। एक वेल प्लान्ड और सिस्टमैटिक हमले में हम उनके सभी बेस और डिफेंस सिस्टम को अपना टारगेट बना सकते हैं।
अच्छा है, यानी जहनी तौर पर आप लोगों ने हमले की पूरी तैयारी कर ली है।
जी, अगर खुदा चाहे।
मैंने इसीलिए आपसे दरख्वास्त की थी कि आप इस्फहान आए ताकि इस मौजू पर आपसे मशवरा कर सकें। सार्जेंट बाबाई ने मंसूबा बनाया है।
इराक की सरहद के अंदर कैसे दाखिल होंगे, इस बारे में सोचा है?
उसी की प्लानिंग कर रहे हैं सर, काम अभी बाकी है।
क्या आप बता सकते हैं कौन से जहाज से?
जी पता है, F-14।
हर नया पायलट भी ये बात जानता है कि F-14 इस दुनिया का भले ही सबसे एडवांस जहाज है लेकिन बॉम्बर नहीं है। इससे ज्यादा तुलानी परवाज नहीं कर सकते हैं। इसकी डिजाइनिंग सिर्फ बैकअप और हवाई जंग के लिए की गई है।
जिस मंसूबे पर मैं काम कर रहा हूँ दरअसल इसी मौजू के मुतालिक है। جلو صاحب مجھے ایک ہفتے کا وقت دیجیے، میں ماران کے ذریعے ایف 14 کی ریفیولنگ کا منصوبہ تیار کر لوں گا۔ آپ یقین کریں مجھے پتا میں کیا کر رہا ہوں۔
میری نظر میں بہتر ہوگا میٹنگ کو یہیں ختم کریں اور اپنے کام میں لگ جائیں۔
جنرل صاحب اجازت دیں،
میں تمہارے اس ناتجربہ کار منصوبے کی خاطر F-14 کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔
لیکن ہوائی ریفیولنگ کے سارے اکوپمنٹس ہمارے گودام میں موجود ہیں، یہ سبھی حوادث اور نقصان امریکی ماہرین کی دی ہوئی ادھوری ٹریننگ کا نتیجہ ہے، ہمیں خود اس کا حل نکالنا ہوگا، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔
اس منصوبے کے لیے F-14 کا استعمال کرنا ناممکن ہے، اگر کوئی نیا منصوبہ ہو تو بتانا۔